بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 54, 55 اور 56 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دھرم سے پھرے گا वो जान ले कि इससे ईश्वर को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में ईश्वर ऐसे लोगों को लाएगा जिन्हें वो पसंद करता होगा, और वे भी ईश्वर को पसंद करते होंगे। वे ईमान वालों के समक्ष नर्म और काफिरों के समक्ष कड़े होंगे। वे ईश्वर के मार्ग में जिहाद और संघर्ष करेंगे तथा किसी धिक्कार करने वाले की धिक्कार से नहीं डरेंगे। ये ईश्वर की कृपा है जिसे वो जिसको चाहता है प्रदान करता है, और ईश्वर अत्यंत व्यापक ज्ञान वाला और जानकार है। हे ईमान वालों, तुम्हारा अभिभावक तथा स्वामी केवल ईश्वर, उसका पैगंबर और वे ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की स्थिति में ज़कात देते हैं। और जो कोई ईश्वर, उसके पैगंबर तथा ऐसे ईमान वालों की अभिभावकता और स्वामित्व को स्वीकार करे, तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर का गुठी प्रभुत्व प्राप्त करने वाला है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। ईद गदीर की पूर्व संध्या पर रेडियो तेहरान आप सब की सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता है। आज रविवार है, जुलाई की 17, जिलेजा की 17 और तीर की 26 तारीख। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम के रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल बातें, उसके पश्चात होगा दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओ, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کا وہ دیش ہے جس نے پرمانو حملہ کیا ہے۔ برٹین کے پورو پردھان منتری ٹونی بلیئر نے کہا ہے کہ دنیا پر پشچم کا ورچسپ سماپت ہو رہا ہے۔ نکی ہیلی نے کہا کہ بائیڈن کی نیتی اسرائیل اور عربوں کے چہرے پر تماچا ہے۔ سری لنکا کے پورو راشٹرپتی نے کہا کہ پوری کھمتا سے ماتر بھومی کی رکشا کی اور آگے بھی کرتا رہوں گا۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گنتنتر ایران کے ودیش منترالے نے امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن کے پشچمی ایشیا دورے کے دوران ان کی طرف سے لگائے گئے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد بیان بازی علاقے میں تناؤ اور ٹکراؤ کو بڑھاوا دینے کی واشنگٹن کی سازش کا حصہ ہے۔ ودیش منترالے کے پروکتا ناصر کنعانی نے کہا کہ امریکہ دنیا کا وہ دیش ہے جس نے پرمانو حملہ کیا۔ امریکہ انہیں دیشوں کے آنترک معاملوں میں لگاتار ہستکشیپ کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ امریکہ علاقے کے دیشوں کو ہتھیار اور سینی اپکرن بیچتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناکام ہو چکی ایرانوفوبیا پھیلانے کی نیتی کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناصر قنعانی نے امریکہ کی طرف سے کئی دشکوں سے جاری اسرائیل کی اندھی حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی علاقوں اور بیت المقدس پر زیونی شاسن کے غیر قانونی قبضے کے اپرادھ میں امریکہ پوری طرح شامل ہے۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے ایران کی سیدھانتک نیت پر بل دیتے ہوئے کہا کہ ایران ناگرک لکچھوں کے لیے پرمانو کارکم چلا رہا ہے اور انتراشٹریہ نیموں کے دائرے میں اپنی یہ گتویدیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ کئی سال سے امریکہ ایران کے ناگرک پرمانو کارکم کے خلاف بھی بنیاد آروپ لگا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے پرمانو ہتھیاروں کو بار بار نظر انداز کر رہا ہے۔ ناصر قنعانی نے کہا کہ ایران پڑوسی دیشوں کے ساتھ بات چیت کی نیتی پر اڈگ ہے اور پڑوسیوں سے اچھے رشتے کا سواگت کرتا ہے۔
امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ملاقات سامان سے بالکل الگ رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں جہاں امریکی راشٹرپتی نے سعودی پترکار جمال خاشقجی کی سعودی پترکار جمال خاشقجی کا مدعا اٹھایا، وہی بن سلمان نے بھی امریکہ کے ہاتھوں دنیا کے الگ الگ حصوں میں ہوئے مانواधिकारوں کے ہنن کی گھٹناؤں کا ذکر کیا۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہوں نے بن سلمان سے ملاقات پہ جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں امریکہ کی چنتاؤں سے انہیں اوگت کرایا اور کہا کہ 2018 میں ہونے والا یہ قتل امریکہ کے لیے بہت مہتو رکھتا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ دوسرے وشیوں پر دونوں دیشوں کے بیچ سہمتی بھی ہوئی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ سعودی کراؤن پرنس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس ہتیا کانڈ میں لپت نہیں ہیں، جس پر بائیڈن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لپت تھے۔ وہیں کراؤن پرنس بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب نے خاشقجی کیس میں جان سے لے کر ٹرائل اور سزا تک سارے قانونی پراودھان پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے دیش نے اس طرح کے اصول بنائے ہیں کہ بھوشیہ میں اس پرکار کی گھٹنا نہ ہو۔
سعودی عرب کے ودیش منتری فیصل بن فرحان نے یہ سویکار کرتے ہوئے کہ اسرائیل کے ساتھ سہیوگ کے وشے پر کوئی چرچا نہیں ہوئی ہے کہا ہے کہ ہماری دوستی کا ہاتھ ایران کی طرف بڑھا ہوا ہے۔ فیصل بن فرحان نے جدہ شکر سمیلن کے سماپتی پر پترکار سمیلن میں کہا کہ ان کا دیش ایران کے ساتھ سامان رشتوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدہ بیٹھک امریکہ کی ساجداری کے وشے پر کیندری تھی۔ سعودی ودیش منتری نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والی وارتا سارتھک رہی لیکن ابھی تک اپنے لکش تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ ہمیں آشا ہے کہ آنے والے سمے میں اس سندرب میں بنیادی بدلاؤ دیکھنے میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوٹنیتی کے سمادھان ہی ایران کے سمبندھوں میں بہتر مارگ ہے۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ایران کی طرف سے اس شکر سمیلن کے نام کوئی سندیش نہیں بھیجا گیا۔
پورو امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ جب ریاض کا دورہ کر کے امریکہ لوٹے تھے، ان کی جھولی میں 460 ارب ڈالر کے سود تھے، مگر جدہ شکر سمیلن سے اب جو بائیڈن خالی ہاتھ امریکہ لوٹے ہیں۔ بس کچھ آرمبک وعدے اور سہمتی پتر ہیں جن سے امریکہ کو کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے اسرائیل کا تھوڑا فائدہ ضرور کروا دیا ہے کہ سعودی عرب کی وایو سیما اسرائیلی ویمانوں کے لیے کھول دی گئی ہے، جبکہ اس کے بدلے میں سعودی عرب کو تیران اور سنافر دویپ مل گئے ہیں۔
سنیوکت راشٹر سنگھ میں امریکہ کے پور راجدوت نے ایران کے ساتھ پرمانو سمجھوتوں کو جیوت کرنے ہیتو امریکی سرکار کے درشٹکوڑ کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے سمند میں جو بائیڈن کی نیتی اور پرمانو سمجھوتے میں واپسی ہیتو وارتا اسرائیل کے چہرے پر تھپڑ ہے۔ سماچار ایجنسی ارنا کی رپورٹ کے انوسار ڈونلڈ ٹرمپ کے راشٹرپتی کال میں راشٹر سنگھ میں امریکہ کے راجدوت رہ چکے نیکی ہیلی نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں بائیڈن کی نیتی اسرائیل اور واشنگٹن کے عرب گھٹکوں کے چہروں پر تھپڑ ہے۔ انہوں نے ایک ساکشاتکار میں جو بائیڈن کی مدھیہ پورو کی 4 دیوسیہ یاترا کی اور سنکیت کیا اور ایران کے سمبندھ میں بائیڈن کی نیتی کو امریکہ کے لیے خطرناک بتایا اور دعویٰ کیا کہ ایران روس کو ڈرون بیچ رہا ہے اور امریکی سینکوں پر حملے کرتا ہے۔ ایسی حالت میں بائیڈن ایران کے ساتھ سمجھوتے پر ہستاکشر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی پرکار نیکی ہیلی نے پرمانو سمجھوتے سے نکل جانے ہیتو ٹرمپ سرکار کی ایک طرفہ نیتی کا بچاؤ کیا اور کہا کہ بائیڈن نے ایران کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے بجائے کمزوری کا پرچے دیا ہے، جبکہ ہمیں شکتی کا پرچے دینا چاہیے۔
برٹین کے پورو پردھان منتری ٹونی بلیئر نے کہا کہ دنیا پر پشچم کا ورچسو سماپت ہو رہا ہے۔ برٹین کے پردھان منتری کا ماننا ہے کہ دنیا بہودرویہ ویوستھا کی اور بڑھ رہی ہے اور دنیا کے دیشوں پر پشچم کا آرتھک اور راجنیتک ورچسو سماپت ہو رہا ہے۔ سماچار ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے انوسار ٹونی بلیئر نے شنیوار کو اپنے بھاشن کے دوران کہا کہ وشو دو دھروے یا سمبھوتا بہودرویہ ویوستھا کی اور آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شتابدی میں سب سے بڑی بھو راجنیتی چین کی اور سے پیش آئے گی، نہ کہ روس کی اور سے۔ ہم پشچم کے ورچسو کے انت سے نکٹ ہو رہے ہیں۔ اسی پرکار انہوں نے چین کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بتایا اور کہا کہ چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ تائیوان کو چین کے انترگت لانے کے اپنے ارادے کو چھپا نہیں رہے ہیں۔ ان کے انوسار شی جن پنگ کے نیترتو میں چین اپنے پربھاؤ کو ادھک کرنے کے لیے لڑ رہا ہے اور یہ کاریہ وہ آکرمک روپ سے انجام دے رہا ہے۔
یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने त्याग पत्र में खुद बचाओ अपने त्याग क्षमा कीजिएगा श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने त्याग पत्र में खुद का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने पूरी क्षमता के साथ मातृभूमि की रक्षा की और भविष्य में भी ऐसा करते हैं। राजपक्षे के त्याग पत्र को शनिवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान पढ़ा गया। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति पद के लिए हुई रिक्ति की घोषणा करने के सिलसिले में संक्षिप्त समय के लिए श्रीलंकाई संसद की बैठक हुई। अर्थव्यवस्था को संभालने में सरकार की नाकामी के चलते श्रीलंका में तेज हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते बुधवार को राजपक्षे देश से भाग गए थे। सिंगापुर से राजपक्षे द्वारा भेजे गए त्याग पत्र को संसद के 13 मिनट के सत्र के दौरान पढ़ा गया। राजपक्षे ने अपने त्याग पत्र में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के बदतर होने के लिए कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिए सर्वदलीय सरकार बनाने की कोशिश करने जैसे बेहतरीन कदम उठाए। राजपक्षे ने अपने त्याग पत्र में कहा है कि 2020 और 21 के दौरान मुझे लॉकडाउन का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा और विदेशी मुद्रा की स्थिति बिगड़ गई। मेरे विचार में मैंने स्थिति से निपटने के लिए एक सर्वदलीय या राष्ट्रीय सरकार बनाने का सुझाव देकर सबसे अच्छा कदम उठाया।
भारत में नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चयन को लेकर राजनीतिक कवायद अपनी चरम गति पर पहुंच गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ को भाजपा का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद संभाला था, जहां भाजपा और टीएमसी के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। भाजपा और टीएमसी के बीच जोरदार मुकाबला होता है। धनखड़ अपने फैसलों के चलते लगातार सुर्खियों में रहे और कहा जाता है कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को परेशान करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही उनका राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हाल में महुआ मोइत्रा के काली विवाह तक जारी रहा।
दुबई जा रहे एयर इंडिया को मस्कत में उतारा गया, जबकि शारजा से आ रहे इंडिगो विमान की कराची में लैंडिंग कराई गई। रविवार को एक के बाद एक दो भारतीय एयरलाइन कंपनियों की इंटरनेशनल फ्लाइट्स को तकनीकी गड़बड़ी के चलते डाइवर्ट किया गया। कालीकट से दुबई जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को मस्कत में लैंड कराया गया। इससे कुछ घंटे पहले शारजा से हैदराबाद जा रहे इंडिगो के प्लेन की पाकिस्तान के कराची नगर में लैंडिंग कराई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की फॉरवर्ड गैलरी में एक वेंट से जलने की गंध आई, जिसके बाद प्लेन को मस्कत डाइवर्ट कर दिया गया।
12 टन खतरनाक सामग्री से भरा यूक्रेन का मालवाहक विमान यूनान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्राप्त समाचारों के अनुसार उत्तरी यूनान में कवाला शहर के समीप शनिवार को यूक्रेन की एक विमानन कंपनी का मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 8 लोग सवार थे। स्थानीय निवासियों ने हादसे के बाद 2 घंटों तक धमाकों की आवाज़ सुनी और आग की लपटें उठती देखी। यूनान के नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने बताया है कि यह विमान सर्बिया से जॉर्डन जा रहा था। यूनानी मीडिया ने बताया कि विमान में 8 लोग सवार थे और इसमें 12 टन खतरनाक सामग्री ले जा रही थी, जिसमें ज्यादातर विस्फोटक थी। और इसी के साथ रेडियो थेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नजर में ईश्वरीय संदेश पहुंचाने की शर्त और साहस व वीरता के मापदंड की चर्चा करेंगे। आशा है हमारा ये कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा। मोहम्मद मेहदी का सलाम, स्वीकार कीजिए। दोस्तों, ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि संदेश पहुंचाने की महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इस बात से न डरा जाए कि लोग क्या कहेंगे और ईश्वरीय भय की महत्वपूर्ण उपलब्धि वास्तविकता का स्पष्ट होना है। ईश्वर पवित्र कुरान में फरमाता है, और अगर अल्लाह और रसूल तथा प्रलय के तलब करने वाले हों तो ईश्वर ने तुम में से नेक किरदार महिलाओं के लिए बहुत बड़ा पारितोषिक उपलब्ध करा रखा है। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि इस आयत से ये समझ में आता है कि ईश्वरीय संदेश पहुंचाने, अच्छी बातें पहुंचाने की महत्वपूर्ण शर्त यही न डरना है कि ईश्वर पवित्र कुरान में फरमाता है कि वो लोग अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। लोग कहते हैं कि जनाब, अगर ये काम करते हैं तो संभव है कि कोई मुझे धोखा दे दे। तो ठीक है, हिसाब किताब को अल्लाह के हवाले कर दो, छोड़ दें, अल्लाह आपके लिए हिसाब किताब करेगा। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि अगर आप लोगों की बहसों या चर्चाओं की परवाह कर रहे हैं, लोगों की अनेक तरह की चर्चाओं के बजाय सारा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह की परवाह करना ईश्वरी भय अर्थात तक्वे की निशानी है। दोस्तों, ईरान के इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं कि अगर ये काम नहीं किया गया या इससे पीछे हट गए तो आप पर लोगों का भय छा गया, तब आपके लिए वो अंतर करने वाला जिसके बारे में अल्लाह कहता है नहीं मिल सकेगा। ईश्वर पवित्र कुरान में कहता है कि ईमान लाने वाले, अगर तुम ईश्वरीय भय अपनाओगे तो वो तुम्हें सत्य और असत्य में अंतर करने की योग्यता व क्षमता प्रदान कर देगा। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि अंतर पैदा करने की क्षमता ईश्वरी भय से हासिल होती है। इंसान के लिए सच्चाई सामने आना ईश्वरीय भय की निशानी है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के महत्वपूर्ण तेहरान दौरे के बारे में।
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान,
और फिर बात करेंगे CIA के प्रमुख की आर्मेनिया की गोपनीय यात्रा के बारे में।
अमरीका की गुप्तचर सेवा के प्रमुख विलियम बर्न,
और अंत में चलेंगे भारत, जहाँ कश्मीर की ताजा स्थिति के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान, जो एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ सोमवार की शाम तेहरान पहुंचने वाले हैं, और जहां वो अपने ईरानी समकक्ष के साथ आर्थिक, राजनीतिक और पड़ोस के विषयों पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ सोमवार की शाम तेहरान पहुंच रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के निमंत्रण पर होने वाले इस दौरे में दोनों देशों के अधिकारी आर्थिक, राजनीतिक और पड़ोस के विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अर्दोगान अस्ताना शांति प्रक्रिया के गारंटर देशों यानी ईरान, तुर्की और रूस की 7वीं शिखर बैठक में भाग लेंगे। रजब तैयब अर्दोगान का औपचारिक स्वागत मंगलवार की सुबह सादाबाद महल में किया जाएगा। अर्दोगान का यह दौरा तब हो रहा है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी तेहरान पहुंच रहे हैं, जो तीनों देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर बैठक में सीरिया संकट का जायजा लिया जाएगा, इसलिए तेहरान में होने वाली ये शिखर बैठक तीनों देशों के साथ ही इलाके के देशों के लिए भी खास महत्व रखती है। ईरान और तुर्की दो पड़ोसी इस्लामी देश हैं। इन देशों के आपसी रिश्ते और सहयोग का क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा महत्व है। दोनों देशों ने हालिया वर्षों में ये साबित किया है कि क्षेत्र के देशों के लिए वे प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, जबकि बाहर से आने वाली शक्तियां इस इलाके से अपनी बिसात समेट लें। ईरान और तुर्की रूस के साथ मिलकर इस इलाके की समस्याओं को हल कर सकते हैं और सीरिया जैसे संकट का टिकाऊ समाधान निकाल सकते हैं। ये भी सच्चाई है कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान निकाला जाना बाकी है, मगर ये भी निश्चित है कि इन समस्याओं का समाधान ये देश मिलजुल कर निकाल सकते हैं। सीरिया में इस समय ईरान और रूस के सलाहकार मौजूद हैं, जो सीरियाई सरकार की दावत पर वहां गए हैं और सेवाएं दे रहे हैं। वहीं सीरिया की धरती पर तुर्की की सेना की मौजूदगी पूरी तरह गैर कानूनी है, इसलिए तुर्क सैनिकों को बहुत जल्द यहां से निकलने पर मजबूर होना पड़ेगा। तुर्की ने अमरीका और कुछ अरब सरकारों की साजिश का हिस्सा बनकर सीरियाई सरकार को गिराने की कोशिश की और इसी बीच उसने अपने सैनिक भी सीरिया के भीतर पहुंचा दिए। जाहिर है कि तुर्की का ये कदम किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। बहरहाल तुर्क राष्ट्रपति का तेहरान दौरा द्विपक्षीय सहयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के अगले एक साल के दौरान आपसी सहयोग के विस्तार की योजना को आगे बढ़ाना है। वहीं ईरान, रूस और तुर्की की शिखर बैठक भी महत्वपूर्ण है। अगर इस शिखर बैठक के फैसलों पर अमल होता है तो अमरीका को इस इलाके से वापस भेजने में बड़ी मदद मिलेगी।
और अब चर्चा करते हैं खुफिया तरीके से आर्मीनिया पहुंचे अमेरिका की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी CIA के चीफ और उनके द्वारा क्षेत्र में ईरान का डर दिखाकर हथियार बेचने की कोशिशों के बारे में। इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
अमेरिका की गुप्तचर सेवा के प्रमुख विलियम बर्न्स एक शिष्टमंडल के साथ गुप्त यात्रा पर आर्मीनिया पहुंचे हैं। स्पुतनिक समाचार एजेंसी ने CIA के प्रमुख और आर्मीनिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भेंट वार्ताओं की रिपोर्ट दी है। हालांकि आर्मीनिया में मौजूद अमरीकी कूटनयिकों ने इस यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ऐसा लगता है कि केंद्रीय एशिया और पश्चिमी एशिया में लगातार पराजय के बाद अमरीकी अधिकारियों ने दक्षिणी कफकाज या साउथ काकेशस में अपना प्रभाव बनाने के लिए सारे संसाधन लगा दिए हैं। CIA के प्रमुख की आर्मीनिया यात्रा के बारे में वहां के सरकारी संचार माध्यमों में इस ओर ध्यान न दिए जाने के बावजूद स्वतंत्र और सोशल मीडिया पर इस संबंध में प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। 29,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के स्वामी आर्मीनिया जैसे छोटे से देश में अमरीका का सबसे बड़ा दूतावास स्थित है। रूस, कनाडा और अर्जेंटीना जैसे देश जो भूभाग की दृष्टि से काफी बड़े हैं, उन्होंने भी अमेरिका को अपने यहाँ इतने बड़े क्षेत्रफल में दूतावास बनाने की अनुमति नहीं दी, जबकि आर्मीनिया में 9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अमेरिकी दूतावास बना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, इसलिए इस विषय को आसानी से अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त आर्मीनिया में अमेरिका की कुछ जैविक प्रयोगशालाएं भी बनी हुई हैं। CIA के प्रमुख की आर्मीनिया यात्रा के दृष्टिगत इस बात की भी संभावना पाई जाती है कि क्रेमलिन पर दबाव डालने के उद्देश्य से अमरीकी अधिकारी कोई चाल चल सकते हैं। सीधी सी बात है कि रूस या किसी भी स्वतंत्र देश के विरुद्ध अपनी योजना को लागू करने के लिए अमरीका को आर्मेनिया के सरकार के किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त CIA के प्रमुख की इस यात्रा की कई अन्य आयामों से भी समीक्षा की जा रही है। उदाहरण स्वरूप, हालिया दिनों में अमेरिका और जायोनियों से संबंधित संचार माध्यमों ने ईरान द्वारा रूस को उन्नत ड्रोन बेचने पर आधारित एक समाचार को बहुत आम किया, जबकि ईरान और रूस के अधिकारियों ने इसका खंडन किया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका इस अफवाह को फैलाकर एक ओर रूस की सैन्य शक्ति को कमजोर दर्शाना चाहता है ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि रूस में अब मुकाबले की क्षमता नहीं रह गई है। दूसरी ओर इस अफवाह को फैलाकर वो बड़े पैमाने पर अपने हथियार बेचने के चक्कर में है। जब क्षेत्रीय देशों को ईरान की बढ़ती शक्ति का विश्वास हो जाएगा तो वे निश्चित रूप से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए हथियार खरीदना चाहेंगे। केंद्रीय एशिया में व्हाइट हाउस की हालिया विफलताओं के कारण ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका अपने दृष्टिगत कार्यक्रम को लागू करने के लिए आर्मेनिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हो।
और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं दिन प्रतिदिन कश्मीर की खराब होती स्थिति के बारे में। PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू कश्मीर के संबंध में दिल्ली सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो इंतहाई गंभीर है। श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में उनके अनुसार अगर 150 लोगों ने बंदूक उठा रखी है परंतु उन्हें समाप्त या उनका अंत करने के लिए यहाँ पर 10 लाख के निकट सेना मौजूद है। उन्होंने कहा कि असल में यहाँ राजनीतिक दबाव है और यहाँ पर लोगों को अपनी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिसके कारण यहाँ लोग बंदूक उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को दिल से लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो स्थिति जम्मू कश्मीर में पाई जा रही है वो इंतहाई गंभीर है। पर्टिकुलरली उन्होंने गाठी का जिक्र करते हुए कहा कि गाठी में जो स्थिति पाई जा रही है वो गंभीर है और अगर इसे सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में श्रीनगर के एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिस पर लोगों ने जब आपत्ति जताई तो उनके विरोध में FIR दर्ज कर दी गई। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है परंतु वर्ष 2019 के बाद यहाँ पर किसी को भी आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो मिशन उन्होंने उठा रखा है मैं लोगों से समर्थन चाहती हूँ ताकि हमारे युवकों का भविष्य अच्छा हो। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है और यहाँ पर हर समुदाय की इज्जत होनी चाहिए, परंतु उन्होंने कहा कि जो स्थिति इस समय पाई जा रही है वो इंतहाई गंभीर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
इसका मतलब है आपके अंदर एक ताकत है जिसको दबाने के लिए 10 लाख फौज है यहाँ, नहीं तो यहाँ तो बंदूक कितने हैं, 100-150 लड़के हैं, ज्यादा बच्चे तो नहीं है इस वक्त जिनके हाथ में बंदूक है, ये खुद ही कहते हैं, मगर बाकी आपके हाथ में बंदूक नहीं है, मेरे हाथ में बंदूक नहीं है। ये डरते किस चीज से, डरते हैं जम्मू कश्मीर के लोग आवाज ना उठाए, इस आवाज को दबाओ, इनको सबसे ज्यादा खौफ आवाज का है। कहते हैं जब कोई चीज डरौनी हो, जिससे डर लगता हो, तो हमें उससे भी ज्यादा डरावना बनना पड़ेगा। और इनको किस चीज से डर लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएं और अपनी आवाज उठाएं जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, मुसीबत के खिलाफ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक बच्चा था, मुस्लिम लड़का, उसको पुलिस ले गई, उसकी लाश देके गई। कोई सड़क पे कोई निकलता है अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता है तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो कैसे चलेगा ये? ये तो फिरौन का राज तो तब भी नहीं चला था, आज भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ आज आप यहाँ आए, मुझे आपसे आपके आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं खुदा ना खास्ता उनके लिए हम ये जो कांटे इस वक्त बिछा रहे हैं हमारी राहों में, इन कांटों को हम निकाल सकें।
इस बीच एक बार फिर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के हवाले से अगरचे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं परंतु अब इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से आदेश जारी करने होंगे ताकि जितने भी राजनीतिक दल है वो अपनी राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आए दिवस ये सूचनाएं तो प्राप्त हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, परंतु सीरियसली अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर नई दिल्ली से कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के आयोजन से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस किया जाए। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की आयत क्रमांक 90 और 91 की तिलावत सुने।
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى।
और निश्चित रूप से हारून इससे पहले उनसे कह चुके थे कि हे मेरी जाति के लोगों, इस बछड़े के माध्यम से तुम्हारी परीक्षा ली गई है और निसंदेह तुम्हारा पालनहार अत्यंत क्षमाशील है, तो मेरा अनुसरण करो और मेरा आज्ञा पालन करो। किंतु बनी इसराइल ने कहा कि जब तक मूसा लौटकर हमारे पास ना आ जाए तब तक हम इसी पद्धति मूर्ति पूजा पर बाकी रहेंगे।
इससे पहले हमने कहा कि तौरात लेने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर्वत पर जाने और अपनी जाति के लोगों में उनकी अनुपस्थिति के दौरान सामरी नामक एक पदभ्रष्ट व्यक्ति ने अधिकांश लोगों को सत्य के मार्ग व एकेश्वरवाद से विचलित कर दिया तथा उनके बीच मूर्ति पूजा को प्रचलित कर दिया।
ये आयतें कहती हैं कि हजरत मूसा के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल के बीच उनके उत्तराधिकारी के रूप में उपस्थित थे, लोगों को चेतावनी देते रहते थे कि सोने के इस बछड़े और इसकी अस्वाभाविक आवाज के धोखे में न आएं। ये सब परीक्षा के साधन हैं ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि तुम लोग किस सीमा तक अनन्य ईश्वर पर ईमान रखते हो। वही ईश्वर जो तुम्हारा रचयिता व पालनहार है और उसी ने तुम्हें ये सारी अनुकंपाएं प्रदान की हैं।
सामरी की भ्रष्ट आस्थाओं का पालन करने के स्थान पर मेरी बातों का अनुसरण करो कि मैं निश्चय ही वास्तविक ईश्वर की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। क्या तुम भूल गए हो कि हजरत मूसा ने तूर पर्वत की ओर जाने से पहले मुझे अपना उत्तराधिकारी निर्धारित किया था और मेरे आज्ञा पालन को तुम्हारे लिए अनिवार्य किया था, किंतु बनी इसराइल के लोग अपनी पद भ्रष्टता पर डटे रहे जिसके कारण उन्होंने हजरत हारून के स्पष्ट तर्कों को स्वीकार नहीं किया और बछड़े की पूजा जारी रखी, यहाँ तक कि हजरत मूसा तूर पर्वत से वापस लौट आए।
इन आयतों से हमने सीखा कि सभी ईमान वालों की परीक्षा ली जाती है ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि वे वास्तविक ईश्वर पर कितना ईमान रखते हैं और भ्रष्ट विचारों व आस्थाओं के मुकाबले में अपने विश्वासों पर किस सीमा तक दृढ़ता से डटे रहते हैं।
परीक्षाओं व संकटों के अवसर पर ईश्वर के पवित्र बंदों का अनुसरण मनुष्य को पदभ्रष्टता के खतरे से सुरक्षित रखता है।
Oh,
آئیے اب سورۃ طٰہٰ کی آیت کرمانک 92 اور 93 کی تلاوت سنیں۔
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري۔
جب موسیٰ لوٹے تو انہوں نے کہا، ہے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ پد بھرشٹ ہو گئے ہیں تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے میرا انوسرن نہ کیا؟ تو کیا تم نے میرے آدیش کی اوہیلنا کی؟
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پروت کی اور جانا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ وہ لوگوں کے بیچ رہیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ سماج میں برائی و پد بھرشٹتا نہ پھیلنے پائے۔ اسی کارن جب وہ بنی اسرائیل کے بیچ واپس لوٹے تو انہیں کڑے سور میں سمبودھت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تم نے میرے آدیشوں کا پالن کیوں نہ کیا اور پد بھرشٹتا پھیلانے والوں کے سمکش ڈٹ کیوں نہ گئے؟ کیوں تم نے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں سے سنگھرش نہ کیا اور میرے آدیشوں کی اوہیلنا کی؟
اسپشٹ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے من میں اپنی جاتی کے لوگوں کے لیے پائی جانے والی کرونا و چنتا اس بات کا کارن بنی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس پرکار کا کڑا ویوہار کریں اور پہلی درشٹی میں انہیں ہی بنی اسرائیل کے بیچ مورتی پوجا کے پرچلن کے لیے دوشی سمجھیں۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ سماج کے نیتا لوگوں کی ویچارک اور آستھا سمبندھی پد بھرشٹتا کے سمبندھ میں بھی اتردائی ہیں اور وہ اس سمبندھ میں تٹستھ نہیں رہ سکتے۔
برا انت اور ستیہ کے مارگ سے وچلت ہونے کا خطرہ سبھی ایمان والوں کے سمکش موجود رہتا ہے۔
آئیے اب سورۃ طٰہٰ کی آیت کرمانک 94 کی تلاوت سنیں۔
قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔
ہارون نے کہا، ہے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرا سر، مجھے اس بات کا بھے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کے بیچ پھوٹ ڈال دی اور ایکتا کی رکشا کے سمبندھ میں میری بات پر دھیان نہ دیا۔
جیسا کہ ہم نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی کروج سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ان کی انوپستھتی میں بنی اسرائیل کے لوگ کیوں بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اس آیت میں حضرت ہارون اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اور تم ایک ہی ماتا کی سنتان ہیں، اتہ تم میرے بھائی ہو اور تمہیں میرے ساتھ دیا و سنیہ کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور کرودھ سے میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہیں کھینچنا چاہیے۔
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں کی پد بھرشٹتا کو روکنے کے لیے میں نے ہر سمبھو پریاس کیا، انہیں چیتاونی دی، کنتو نہ کیول یہ کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی بلکہ نکٹ تھا کہ وہ میری ہتیا کر دیتے۔ میں نے سماج کی ایکتا کی رکشا کے لیے کہ ایمان والے اور بچھڑے کی پوجا کرنے والے ایک دوسرے سے نہ الجھ پڑیں، انہیں اتیادھک چیتاونی و اپدیش دینے کے بعد چھوڑ دیا تاکہ تم آ کر ان کے بارے میں نرنے کرو، کیونکہ سوئم تم نے جانے کے سمے مجھ سے کہا تھا کہ لوگوں کے بیچ سدھار کی پدھتی پر کام کروں اور ایسے ہر کاریہ سے بچوں جو سماج میں برائی پھیلنے و ٹکراؤ کا کارن بنے۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ پد بھرشٹتا کے مقابلے میں کرودھ پرکٹ کرنا دھارمک سوابھیمان کا چنہ اور ایشور کے پریہ بندوں کی وشیشتا ہے۔
سماج کے بھرشٹ لوگوں کے ساتھ نپٹنے میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس سے سماج کے وبھن ورگوں کے بیچ ٹکراؤ و مت بھید نہ ہو، کیونکہ اس سے سماج کو ادھک بڑی کھتی پہنچتی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شوتو ابھی آپ نے سنا ساپتاہک کاریکرم قرآن ایشوریہ چمتکار، اور اب پرستت ہے ہماری سبھا کا انتم کاریکرم آج کل۔
آج کل
दोस्तों कार्यक्रम आज कल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम मिसाइल बनाने के क्षेत्र में ईरान की प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
नॉलेज बेस और स्वदेशीकरण दो ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने पिछले 3 दशकों के दौरान ईरान की मिसाइल क्षमता को अधिक विस्तृत किया है। इस क्षेत्र में ईरान इतनी अधिक तरक्की कर चुका है कि देश की सशस्त्र सेना के अधिकार में व्यापक स्तर पर कई प्रकार के मिसाइल मौजूद हैं। शत्रुओं के हमलों के जवाब में इन मिसाइलों के प्रयोग को एक उचित विकल्प के रूप में रखा गया है। अन्य सैन्य विकल्पों की तुलना में बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयोग से खर्च भी कम होता है और मानवीय नुकसान भी कम रहता है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि देश की रक्षा क्षमता में वृद्धि का अधिकार ईरान को भी प्राप्त है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों के विरुद्ध नहीं है।
ईरान के महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों में फाते 110 के प्रकार के मिसाइल उल्लेखनीय हैं। ये मिसाइल बहुत ही सटीक होने के साथ ही इनके मॉडल भी बहुत कम हैं। ईरान की मिसाइल उपलब्धियों में से एक फाते 110 मिसाइल की एक नस्ल हुरमुज है। हुरमुज मिसाइल को 2 किस्मों में बनाया गया है जिनमें महत्वपूर्ण क्षमताएं पाई जाती हैं, हुरमुज 1 और हुरमुज 2। एंटी रडार और एंटी नेविगेशन होने के कारण ये दोनों मिसाइल ईरान की सशस्त्र सेना की शक्ति को दर्शाते हैं। देश की संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से इनको लगातार अपडेट किया जा रहा है।
हुरमुज मिसाइल का एंटी नेविगेशन होना कई हिसाब से उल्लेखनीय है। पहली बात तो यह है कि ईरान और चीन के अतिरिक्त अन्य देश आधिकारिक रूप से इनका प्रयोग नहीं करते। इनकी एक विशेषता यह भी है कि अपनी तीव्र गति और अधिक भार के कारण जहां एक ओर ये अधिक विध्वंसकारी हैं, वहीं पर जल्दी एंटी एयरक्राफ्ट की पकड़ में नहीं आ पाते। जुलाई 2012 में पैगंबर आजम 7 नामक मिसाइल युद्ध अभ्यास के दौरान पहली बार ईरान के एंटी रडार मिसाइल के बारे में सुनने को मिला था। इसकी विशेषता ये थी कि जल और थल कहीं पर भी ये रडार को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। ये मिसाइल वास्तव में हुरमुज 1 मिसाइल का ही वर्जन था जिसका अनावरण अप्रैल 2014 में हुरमुज 2 के साथ किया गया था।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता द्वारा ईरान के एयरोस्पेस की उपलब्धियों की प्रदर्शनी में उपस्थित होने के अवसर पर पहली बार 11 मई 2014 को आधिकारिक रूप में हुरमुज 1 और हुरमुज 2 मिसाइलों का अनावरण किया गया था। इस बैलिस्टिक मिसाइल को शहीद तेहरानी मुकद्दम ने डिजाइन किया था जिसका बाद में उत्पादन किया जाने लगा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल खलीज फारस से ये बहुत मिलता जुलता है। IRGC के कमांडर सरदार हाजी जादे ने फरवरी 2017 को हुरमुज 2 मिसाइल के परीक्षण की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल के अंतिम पीढ़ी का हिस्सा हुरमुज मिसाइल ने ओमान सागर में 250 किलोमीटर की दूरी पर अपने लक्ष्य को साधा था।
हुरमुज 2 की मारक क्षमता या रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। इस मिसाइल की गति आवाज की गति से कई गुना अधिक है। खलीज फारस मिसाइल के विपरीत एंटी रडार हुरमुज 1 मिसाइल की ये विशेषता है कि वो रडार की तरंगों की खोज करते हुए उसके मुख्य केंद्र पर हमला करता है। इसके वॉरहेड के भार का आधिकारिक रूप में ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसके फाते 110 मिसाइल से मिलने स्वरूप के कारण उसका भार 450 किलोग्राम से 600 किलोग्राम तक हो सकता है।
एक सैन्य अभ्यास में प्रकाशित हुरमुज 1 के प्रक्षेपण की तस्वीर से पता चलता है कि इसने 6 मीटर के ऐसे कंटेनर को नष्ट कर दिया था जिस पर रडार लगा हुआ था। इस काम से हुरमुज 1 मिसाइल की सटीकता का पता चलता है। इस बारे में IRGC के वरिष्ठ कमांडर और एयरोस्पेस यूनिट के प्रमुख जनरल अली हाजीजादे का कहना है कि हुरमुज 1 मिसाइल में यह क्षमता पाई जाती है कि वो विमान वाहक पोत पर लगे रडार या धरती पर पेट्रियट साइट या एक खोजी रडार साइट को ध्वस्त कर सकता है। हॉर्मुज़ एक मिसाइल की एक अन्य विशेषता इसकी उच्च गतिशीलता है।
इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि इसके अलग अलग वॉरहेड होते हैं जो उसकी बनावट और उसकी विध्वंस शक्ति के हिसाब से बनाए जाते हैं। खलीज फ़ारस नामक मिसाइल के साथ हॉर्मुज़ एक तथा हॉर्मुज़ दो मिसाइलों की एक विशेषता ये भी है कि इनके भीतर विभिन्न परिस्थितियों में अपने लक्ष्यों को भेदने की पूरी क्षमता पाई जाती है। ईरान के लंबे समुद्र तटों और कई द्वीपों का स्वामी होने के कारण दुश्मन के जहाजी बेड़े पर कई ओर से हमला किया जा सकता है। ऐसे में इन मिसाइलों की नष्ट करने की क्षमता दुश्मन में बाकी नहीं रह पाती। इस प्रकार से देश की रक्षा शक्ति में वृद्धि होगी। हॉर्मुज़ एक मिसाइल में एंटी मिसाइल रडार सिस्टम को नष्ट करने की पूरी क्षमता मौजूद है, इसीलिए इसे एंटी रडार मिसाइल भी कहा जाता है।
फातह 110 मिसाइल सिस्टम की ही भांति हॉर्मुज़ एक मिसाइल 9 मीटर लंबा है। इसका भार 3330 है जबकि वॉरहेड 442 किलोग्राम का है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है। इस बैलिस्टिक मिसाइल में यह क्षमता पाई जाती है कि वो 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद 20 फीट के कंटेनर को बड़ी सरलता से अपना लक्ष्य बना सकता है। यह एक वास्तविकता है कि रडार विरोधी बैलिस्टिक मिसाइल इस समय केवल ईरान के पास हैं। ईरान के अलावा वे देश जो एंटी एयरक्राफ्ट को नष्ट करने के शस्त्रों से सुसज्जित हैं, वे ये काम युद्धक विमानों के माध्यम से करते हैं। ईरान क्षेत्र में सबसे बड़ी मिसाइल शक्ति बन चुका है। वो अब दुनिया के उन गिने चुने कुछ देशों में शामिल है जिनकी अपनी मिसाइल शक्ति है।
हॉर्मुज़ दो बैलिस्टिक मिसाइल समुद्री जहाज रोधी एक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर तक गतिशील लक्ष्यों को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि यह बहुत ही तीव्र गति से समुद्र पर गतिशील या तैरते लक्ष्यों को लक्ष्य बना सकता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह मिसाइल फारस की खाड़ी या ओमान सागर में शत्रु के बड़े जहाजों पर हमला करने में सक्षम है। हॉर्मुज़ दो एक बैलिस्टिक टॉरपीडो है जो समुद्र में संचालित लक्ष्य को निशाना बना सकता है। इसकी मारक दूरी 300 किलोमीटर है। शहीद जनरल हसन तहरानी मुकदम द्वारा विकसित किए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मिसाइलों में से ये एक है।
हॉर्मुज़ दो मिसाइल के बनाने का लक्ष्य एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाजों के भीतरी हिस्सों में पैठ बनाना है। इसका पहला परीक्षण 2016 में मकरान तट पर किया गया था। इसके परीक्षण में ओमान सागर में एक बहुत छोटे से लक्ष्य को टारगेट किया गया था। ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की सशस्त्र सेना की ओर से बारंबार ये कहा जाता रहा है कि वे जहाज जो क्षेत्र में ईरान की सीमा से गुजरेंगे उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। अगर किसी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो इसको भी अंजाम दिया जाएगा।
हॉर्मुज़ स्ट्रेट वो जलमार्ग है जिससे दुनिया में प्रयोग होने वाले कच्चे तेल का 30% भाग गुजरकर दुनिया के देशों में पहुंचता है। इस हिसाब से यह क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। फारस की खाड़ी में पहुंचने के लिए सारे ही जहाजों को ओमान सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में उनको यहां से गुजरते वक्त देश के सुरक्षा बलों को अपनी पहचान बतानी होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मकरान के तटवर्ती क्षेत्र में हॉर्मुज़ दो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लगाए जाने से दुश्मन के मुकाबले में ईरान की शक्ति में वृद्धि होगी। इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम आजकल और अब समय है मुख्य समाचारों की सारांश का। ईरान ने कहा है कि अमेरिका दुनिया का वो देश है जिसने परमाणु हमला किया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा है कि दुनिया पर पश्चिम का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। निक्की हेली ने कहा है कि बाइडेन की नीति इसराइल और अरबों के चेहरों पर तमाचा है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा है कि पूरी क्षमता से मातृभूमि की रक्षा की और आगे भी करता रहूंगा। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आपने शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुना। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi और व्हाट्सएप से संपर्क के लिए हमारा नंबर है 00989035065492। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज। शुभ रात्रि।